नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीकी नागरिकों से विवाह करने वाले 5 लाख प्रवासियों को देश में रहने का कानूनी हक देने की योजना की घोषणा की। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया। विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 मुकाबलों का दौर आज से वेस्टइंडीज में शुरू, अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच सामना। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सुषमा स्वराज सभागार में आयोजित किया जाएगा। समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विद्यार्थी समुदाय में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नया विश्वविद्यालय परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर बना है और यहां कुल 6 विद्यापीठों के अंतर्गत स्नातकोत्तर से लेकर PhD तक के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। वैश्विक समस्याओं के अध्ययन और उनके समाधान से लेकर पाली, संस्कृत, योग जैसे विषय की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती है। 30 से अधिक देशों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अभी अध्ययनरत हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर राजगीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर।
अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित विश्वविद्यालय का नया परिसर 450 एकड़ में फैला है। पर्यावरण संरक्षण के विषय पर आधारित परिसर को नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। परिसर में ऊर्जा सहित अन्य जरूरतों की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा, पेयजल शोधन और अपशिष्ट जल शोधन के लिए संयंत्र लगाए गए हैं। इसमें 100 एकड़ क्षेत्र में कई जल निकाय और अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि की प्रमुख भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी कल वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के साथ ही कृषि लागत कम करने में मदद करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और उनके अमरीकी समकक्ष जेक सलिवन ने नई दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अमरीका के नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया है। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और विनिर्माण, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकारों, उद्योग और शिक्षा जगत में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। वे स्वच्छ ऊर्जा, महामारी संबंधी तैयारियों और अन्य महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नौसेना में विभिन्न प्रकार की संचालन संबंधी, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे से संबंधित गतिविधियों में प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी को उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षमता निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौसेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने और राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता कायम रखेगी। नौसेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र निर्माण के लिए की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण और उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन सैकड़ों प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता निकालने के लिए एक नई पहल की है जिन्होंने अमरीकी नागरिकों से विवाह किया है लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस पहल से लगभग 5 लाख प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने से बचाया जा सकेगा। जो बाइडन का यह कदम उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना के एकदम विपरीत है जिसके तहत बड़े पैमाने पर प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जाना था। नई नीति से उन लोगों को देश में रहने की अनुमति मिल जाएगी जो कम से कम 10 वर्ष से वहां हैं और किसी अमरीकी नागरिक से विवाह कर चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं। ऐसे लोगों को देश छोड़े बगैर स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में तेज गर्म हवाओं और भीषण गर्मी का असर आज से धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक रिपोर्ट।
दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में लू से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल तक और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार में आज से भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। उड़ीसा और बिहार में कल तक गर्म और नमी वाला मौसम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगे आशंका व्यक्त की है कि उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में मौसम विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, गंगई पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होलोंग बंगले में कल रात आग लग गई। ये बंगला 15 जून से पर्यटकों के लिए बंद था इसलिए किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विश्व सिकल सेल दिवस पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के डिंडोरी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित राज्य सरकार के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं हसिया के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है और रक्त प्रवाह अवरूद्ध हो सकता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के ही शहडोल जिले से राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों के 89 विकास खंडों में लगभग 1,11,00,000 नागरिकों की सिकल सेल जांच की जानी है। अब तक 49,17,000 लोगों की जांच की जा चुकी है जिसमें से 1,20,493 लोगों की सिकल वाहक और 18,182 लोगों की पहचान सिकल रोगी के तौर पर हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 22,96,000 जेनेटिक कार्ड भी वितरित किए जा चुके हैं। सिकल सेल रोगियों में सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रदेश के ब्लड बैंकों को भी बेहतर बनाया गया है। सिकल सेल स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग और डाटा ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप और नेशनल सिकल सेल पोर्टल भी विकसित किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में जारी है। महोत्सव में 59 देशों की 61 भाषाओं में कुल 314 फिल्म प्रदर्शित की जा रही हैं। 15 जून को शुरू हुए महोत्सव का समापन शुक्रवार को होगा। एक रिपोर्ट।
18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन आज मेमोरी फुटप्रिंट्स, विल विथ विंग्स, द रिबेलियन ऑफ द फ्लावर्स, अगेंस्ट द टाइड, चिल्ड्रन ऑफ द कोस्ट, रीजन बिहाइंड द मर्डर, द ओल्ड यंग क्रो सहित कई प्रशंसित फिल्में दिखाई जाएंगी। सुबह के सत्र में एम्पावरिंग चेंज, एम्पलीफाइंग इम्पैक्ट थ्रू शॉर्ट फिल्म और डिसेमिनेशन ऑफ शॉर्ट्स, पेनिट्रेशन रीच एंड एक्सपोजर विषय पर पैनल चर्चा रखी गई है। आज एडिटिंग शेपिंग कैरेक्टर्स विषय पर एक मास्टर क्लास भी आयोजित की जाएगी। प्रार्थना, आकाश समाचार, मुंबई।
तेलंगाना राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में विकसित करने की परियोजना पर काम शुरू किया है। इससे छात्रों को नौकरी के लिए तैयार किया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आईटीआई मालेपल्ली परिसर में नए उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों का शिलान्यास किया। इस परियोजना के अंतर्गत 65 आईटीआई को उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों में बदला जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में प्रशिक्षण महानिदेशालय के संचालन की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही कौशल पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने और पिछले दशक में 5,000 से अधिक संस्थानों को जोड़ने की दिशा में डीजीटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आईटीआई की अपनी हिस्सेदारी है, लेकिन उन्हें नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। श्री चौधरी ने भारत में कौशल विकास परिदृश्य को बदलने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। ये कार्यक्रम इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सुझाव MyGov ओपन फोरम, नमो ऐप या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड संदेश के रूप में भेजे जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सूचनाएं एक तरह की ताकत होती हैं, लेकिन फर्जी खबरें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। वे कल नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के 2022-23 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सरकार पर जनता का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओलंपियन और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बीती रात हुए मुकाबले में उन्होंने 85.97 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। नीरज चोपड़ा ने 83.62 मीटर के थ्रो के साथ शुरूआत की। टी20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 8 मुकाबलों का दौर शुरू हो रहा है। पहला मुकाबला अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच कल अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। प्रतियोगिता के इस चरण के लिए 8 टीमें चुनी गई हैं। पहले समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं, जबकि दूसरे समूह में अमरीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका हैं। फाइनल मैच बारबाडोस में 29 जून को खेला जाएगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
धन्यवाद विशाल। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नीट में जरा सी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, नोटिस जारी कर एनटीए और केंद्र से मांगा जवाब। देशबंधु ने बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा भी अखबारों की सुर्खी बना है। अमर उजाला ने किसान सम्मेलन में पीएम के शब्दों को दिया है, दुनिया भर में खाने की हर टेबल पर हो भारत का कोई न कोई उत्पाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जारी जल संकट पर भी अखबारों की नजर है। बूंद बूंद पानी का इंतजार, टैंकरों पर लग रही लंबी कतारें। नवभारत टाइम्स के अनुसार लुटियन जोन भी टैंकरों के भरोसे। बिहार में एक और पुल चढ़ा, भ्रष्टाचार की भेंट देशबंधु में है। अररिया में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना पुल अचानक हुआ धराशायी। दिल्ली हवाई अड्डे पर अब चेक इन में लगेगा कम समय, राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप प्रणाली की हुई शुरुआत।
धन्यवाद सर फिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीकी नागरिकों से विवाह करने वाले 5,00,000 प्रवासियों को देश में रहने का कानूनी हक देने की योजना की घोषणा की। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया। और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।